नमस्कार भारत, आज है 2 सितंबर, दिन सोमवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। अर्थव्यवस्था को लेकर मनमोहन सिंह का तीखा प्रहार, पर जवाब देने से बची वित्त मंत्री। मगर आर्थिक मुद्दे पर चिंता को विपक्ष बता रहा है जायज।
आज क्यों ऑटो सेक्टर से लेकर बिस्कुट तक सभी सेक्टरों के अंदर ये मंदी की हालत क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है।
कुलभूषण जाधव की आज होगी भारतीय अधिकारियों से मुलाकात, और कैसे पहनी हुई भारतीय गेंदबाजी की धार।
भारत के पास बहुत टाइम बाद एक कंप्लीट फास्ट बॉलर आया जो अपने दमखम पे सामने वाली टीम को लिटा सकता है।
होगा खेल और खिलाड़ी, मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने के बारे में कहा कि अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि सरकार से संपर्क में हैं और सरकार हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल एक वीडियो संदेश में देश की अर्थव्यवस्था की हालत को चिंताजनक बताते हुए सरकार से बदले की भावना त्याग कर जानकार लोगों की बातों पर ध्यान देने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्री ने साथ ही स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से नौकरियां खत्म नहीं होंगी। अर्जेंटीना की सरकार अपनी गिरती मुद्रा को संभालने की कोशिश कर रही है। इसके तहत देश के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने आदेश जारी किया है कि बड़े निर्यातकों को विदेशी मुद्रा खरीदने से पहले और विदेश में ट्रांसफर करने से पहले केंद्रीय बैंक की इजाजत लेनी होगी। निवेशकों को डर है कि अगर स्थानीय मुद्रा पैसों में गिरावट जारी रही तो अर्जेंटीना अपने कर्जे नहीं चुका पाएगा। अर्जेंटीना में विपक्ष देश की धराशायी होती अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रपति की नीतियों को जिम्मेदार बता रहा है। ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने सांसदों से कह दिया है कि अगर वो बिना समझौते के ब्रेग्जिट के खिलाफ वोट करेंगे तो उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। सांसदों का एक समूह बिना समझौते के ब्रेग्जिट को रोकने के लिए इस हफ्ते एक विधेयक लाने की योजना बना रहा है। ये योजना तभी सफल हो सकती है जब कुछ कंजर्वेटिव सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ वोट करें। समूह के एक करीबी सूत्र ने बताया कि धमकियों की वजह से वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे। अमरीका ने लेबनान की सीमा पर इसराइल और चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के बीच हुई झड़पों पर चिंता जताई है। अमरीका ने हिजबुल्ला को चेतावनी देते हुए कहा कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे लेबनान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। इससे पहले इसराइल की सेना ने कहा था कि उसने लेबनान में चरमपंथी समूह हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर बम के करीब 100 गोले दागे हैं। हिजबुल्ला ने इससे पहले इसराइल के सैन्य अड्डों पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमले में इसराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया गया था। हमने जवाब में 100 गोले दागे। हम आगे के कदम पर विचार कर रहे हैं। मैंने किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। मैं एक अहम घोषणा करना चाहता हूं कि हमारी तरफ किसी की जान नहीं गई है, कोई घायल नहीं हुआ है, किसी को एक खरोच तक नहीं आई है। ये थे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफान डोरियन बहामस के उत्तर पश्चिमी हिस्से से टकराने वाला है। फिलहाल ये तूफान निचले द्वीपों तक पहुंच गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि डोरियन तूफान से जानमाल का काफी नुकसान हो सकता है। इस तूफान की वजह से करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है, इमारतों को नुकसान पहुंचा है और गाड़ियों तक पलट गई हैं। यहाँ के बाद ये तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ेगा। इसे देखते हुए फ्लोरिडा, जॉर्जिया और उत्तर और दक्षिणी कैरोलिना में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। टेक्सास के पुलिस प्रमुख ने शनिवार को अंधाधुंध गोलीबारी कर 7 लोगों की हत्या करने वाले बंदूकधारी का नाम सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस प्रमुख माइकल गर्क ने कहा कि बंदूकधारी का नाम अलग से बताया जाएगा। जांच अभी भी जारी है। अब तक हमले का उद्देश्य पता नहीं चल पाया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस शख्स ने अकेले इसे अंजाम दिया। मैं इस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता और इसका एक कारण है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। भारत में अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर बहस लगातार गंभीर होती जा रही है। पिछले कुछ अर्से से इस पर लगातार कुछ न कुछ कहा जा रहा है और कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान देकर बहस को और गंभीर बना दिया है। विपक्षी नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं और केंद्र सरकार इस चिंता को बेवजह बता रही है, बल्कि उसका दावा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा होगा। क्या है चिंताएं विपक्ष की और सरकार इस बारे में क्या कह रही है, सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
90 के दशक के बाद से भारत की आर्थिक तरक्की की कहानी के एक अहम किरदार माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने कल एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने मोदी सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत इस राह पर चलना जारी नहीं रख सकता।
I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all
मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो बदले की राजनीति को त्याग कर समझदार लोगों का कहना सुने और हमारी अर्थव्यवस्था को इस मानव निर्मित संकट से बाहर निकाले। मनमोहन सिंह के शब्द। मगर पूर्व प्रधानमंत्री की इस चिंता पर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चेन्नई में संवाददाताओं ने जवाब मांगा तो वो काफी खिन्न नजर आई और ये कहा। अच्छा, ये कहा उन्होंने, बदले की राजनीति और समझदार लोगों से परामर्श। ठीक है, मैं विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से मिल रही हूं और वो जो मुझे सुझा रहे हैं या सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रही हूं। मैं 2 बार ऐसा कर चुकी हूं और भी करूंगी ताकि जो भी मेरे पास आए मैं उन्हें जवाब दूं। निर्मला सीतारमण के शब्द। यानी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है या नहीं, उसकी हालत कैसी है, इसका जवाब देने से वो सीधे मुकर गईं। मगर सवाल जब मोदी सरकार के एक और मंत्री रविशंकर प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया।
अगर कई अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ऐसा कुछ है तो उसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी। आपने देख रहे हैं एक से एक नए नए योजन, तो भारत में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, FDI हुआ है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। और बाकी जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, वो अपने 10 साल की कहानी याद रखें। भारत आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत है और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं।
मगर विपक्ष के एक और बड़े नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का मानना है कि मनमोहन सिंह ने जो बात कही वो गंभीर है।
आज क्यों ऑटो सेक्टर से लेकर बिस्कुट तक सभी सेक्टरों के अंदर ये मंदी की हालत क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और पैसा कब आएगा? जब आप निवेश करें और उसके आधार पर जो नौकरियों को सृष्टि करें, तभी जो है इसका हल हो सकता है। लेकिन सरकार उसे दूर खड़ी है। अभी रिजर्व बैंक को जो लूटा, जो 1,76,000 करोड़, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे सरकार का बताता आंकड़े जो देता और बजट में जो आंकड़े दिए, उनके बीच में फर्क 1,70,000 करोड़, उसको मेकअप करने के लिए ये काम किया गया। अगर वही पैसा अगर आप निवेश करते हैं तब जो है कोई हालत सुधरेगी, लेकिन वो नहीं हो रहा।
कुल मिलाकर पिछले दिनों सरकार ने विकास दर और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में गिरावट जैसे अर्थव्यवस्था से जुड़े जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर जारी आशंकाएं और उन पर चर्चा जोर पकड़ती जा रही है।
तो सवाल बना हुआ है कि जिस भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ समय पहले दुनिया में डंका बजता था, क्या वो डगमगा रही है? क्या है वजह इस संदेह की? ये समझने के लिए BBC संवाददाता संदीप राय ने बात की अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से।
5 क्वार्टर पहले अर्थव्यवस्था 8% पे बढ़ रही थी, अब वो गिरते गिरते हो गई है 5% की रफ्तार से। तो ये ऐसा नहीं कि अभी गिरावट आई है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये 5% से भी कम है, क्योंकि जो क्वार्टरली ग्रोथ का डेटा आता है वो आधारित होता है संगठित क्षेत्र के और कॉरपोरेट सेक्टर के कंपनियों के आधार पे, और जो असंगठित क्षेत्र है वो पूरा इसमें आता नहीं है। तो ये मान लिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। लेकिन चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, जैसे कि साइकिल इंडस्ट्री लुधियाना की है या शू इंडस्ट्री आगरा की है, कि वहाँ पर असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ी तादाद में बंद हो गया है। तो असंगठित क्षेत्र तो गिर रहा है, तो ये अस्यूम कर लेना कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, वो सही नहीं है। और हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 94% लोग काम करते हैं और 45% उत्पादन होता है। और अगर 94% जहाँ पर लोग काम करते हैं वहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है, और वहाँ पे रोज़गार कम हो रहा है तो उससे डिमांड कम हो जाती है। और ये जो डिमांड कम हुई ये नोटबंदी के बाद से शुरू हुआ, फिर GST का असर पड़ा उसके 8 महीने बाद, फिर NPA का असर पड़ा और फिर NBFC का क्राइसिस का असर पड़ा। तो यानी कि 3 साल में 3 बड़े झटके लगे हैं अर्थव्यवस्था को, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है। तो जब इतना बड़ा तबका उसकी आमदनी कम हो जाएगी तो अपने आप डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है तो ग्रोथ नहीं बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि ये जो समस्या है ये असंगठित क्षेत्र से शुरू हुई और अब वो धीरे धीरे संगठित क्षेत्र को भी असर डाल रही है। दूसरी एक बात जो मैं कहूँगा कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था 6% की भी रफ्तार से बढ़ रही है या 5% की रफ्तार से भी, तो एक बहुत अच्छी रफ्तार है। उसके चलते हुए खपत क्यों कम होनी चाहिए, खपत बढ़ती रहनी चाहिए 5% की रफ्तार से। इन्वेस्टमेंट क्यों गिरना चाहिए, वो भी 5% की रफ्तार से बढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो ये जो अभी देखने में आया है कि कंजम्पशन में गिरावट हुई है, खपत में गिरावट हुई है और इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं बढ़ रहा है, वो इसी को दर्शाता है कि रेट ऑफ ग्रोथ आज 5 या 6 या 7% नहीं है, वो 0% रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े लिए ही नहीं जाते हैं। जिस दिन आप असंगठित क्षेत्र के आंकड़े उसमें जोड़ लेंगे तो वो पता लग जाएगा कि रेट ऑफ ग्रोथ 0 या 1% है।
ये जो लोग कहते हैं कि अभी स्लोडाउन की बात हो रही है इकॉनमी में, इसको हम किन स्थितियों में कहेंगे कि मंदी आ गई है?
जब हमारा रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब गिरने ही नहीं लगेगा पर वो नेगेटिव हो जाएगा, तब उसको रिसेशन कहा जाता है या मंदी जो हिंदी में कहते हैं। तो अभी जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो स्लोडाउन दिखा रहे हैं, लेकिन अगर असंगठित क्षेत्र को इसमें जोड़ लें तो फिर मंदी है।
रघुराम राजन से लेकर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि बड़ा कुछ करना पड़ेगा। ये जो सरकार उनके कहने से कर रही है या कुछ स्टिमुलस देने की कोशिश कर रही है, उससे आगे क्या फर्क पड़ेगा?
देखिए, इस समय बात स्ट्रक्चरल चेंज की नहीं है। मेरा मानना है कि जो पैकेज आ रहे हैं, जैसे बैंक का है अभी रिफॉर्म कि आप 4 बड़े बैंक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हाँ वो तो 5 साल 10 साल में असर पड़ेगा, उसका आज क्या असर पड़ने वाला है। पर ये एक दो चीज़ें दिखाता है, एक कि अब फाइनली मिनिस्ट्री ने और सरकार ने मान लिया है कि अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए धड़ाधड़ वो पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। RBI भी अनाउंस कर रहा है कुछ चीज़ें, जितनी भी जो ऑफिशियल एजेंसीज हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, RBI है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, सभी ने अब एडमिट कर लिया कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। वो अभी मंदी नहीं कह रहे पर धीरे धीरे वो भी कहेंगे कि मंदी है, क्योंकि जिस रफ्तार से चीज़ें गिर रही हैं। फिर जो पैकेजेस आए कि RBI से 1.76 लाख करोड़ रुपए ले लिया, वो भी सारा असंगठित क्षेत्र के लिए जा रहा है या वो अपने फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए? असंगठित क्षेत्र के लिए पैकेज नहीं जा रहा, रोज़गार बढ़ाने के लिए पैकेज नहीं जा रहा। जो करना चाहिए, जहाँ से समस्या शुरू हुई, वो है आपके रोजगार का गिरना, असंगठित क्षेत्र का बड़ी बुरी तरह से गिर जाना, इसके लिए पैकेज चाहिए। तो हमें नया पैकेज चाहिए, ये जो पैकेजेस अभी अनाउंस हो रहे हैं उससे कोई इमीडिएट फायदा नहीं होने वाला।
अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात कर रहे थे संदीप राय। और आइए अब नजर डालते हैं कि आज भारतीय अखबारों में क्या प्रमुख खबरें आज पहले पन्ने पर हैं। दिल्ली से छपे अखबारों पर नजर डाल चुकी हैं गुरप्रीत, क्या दिखाई दे रहा है आज?
जी, इंडियन एक्सप्रेस में सबसे पहली खबर जो मुझे दिख रही कि असम में NRC जो अभी फिलहाल ही हुई है, जो सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक हैं उन्होंने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताई है और कहा है कि कई सही नागरिक भी बाहर हो गए हैं। और द हिंदू अखबार में जो खबर है वो कह रही है कि कुछ जिलों में रिवेरिफिकेशन के लिए NRC के सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके अलावा जो कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने की पाकिस्तान ने पेशकश की है, ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस में है। और मंदी की आहट के बीच GST संग्रह में गिरावट, ये जनसत्ता अखबार में खबर है। अगस्त में GST से सरकार की आय जुलाई के मुकाबले घट गई है। अगस्त में देश का कुल GST संग्रह 1 लाख करोड़ से घटकर 98,202 करोड़ रुपए पर अटक गया है। रविवार को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने आंकड़ा जारी किया है, इसके मुताबिक जुलाई में कुल GST संग्रह 1.02 लाख करोड़ था। इसके बाद लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया है जो उसमें ये कहा गया है कि 49,49,000 फाइलिंग हुई है इनकम टैक्स रिटर्न की अगस्त 31 तक, जी जो कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो है इसमें फाइलिंग हुई है। इसके अलावा सरकार कश्मीर में सुरक्षा बलों को घटाने की योजना बना रही है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। द हिंदू अखबार के मुताबिक सोमवार को कश्मीर के मुद्दे पर यूरोपीय संसद में बैठक होनी है। इससे पहले ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की और कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई। वहीं एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को कम करने की योजना बना रही है। और असम में एक डॉक्टर को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है, ये खबर दिख रही है मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में। असम के जोरहाट में चाय बागान के मजदूरों ने एक बुज़ुर्ग डॉक्टर की पीट पीट कर हत्या कर दी है, जिसके विरोध में जो है असम के डॉक्टरों ने 3 सितंबर को राज्य भर में 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। हालाँकि जो हड़ताल में आपात सेवाएँ हैं वो शामिल नहीं होंगी। और चंद्रयान 2 को लेकर भी एक खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि लैंडर ऑर्बिटर आज होंगे अलग। इसरो ने रविवार को कहा कि उसने चंद्रयान 2 को चंद्रमा की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करवाया और 2 सितंबर यानी आज को लैंडर को ऑर्बिटर से अलग करने की तैयारी है। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार में खबर है कि दिल्ली में पहले दिन 80% कम चालान कटे, यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने वाला कानून रविवार से लागू हो गया। कड़े प्रावधानों का नतीजा रहा कि पहले दिन बड़ी संख्या में लोग नियमों का पालन करते नजर आए। शायद यही वजह है कि दिल्ली में जहां रोजाना औसतन 20,000 चालान कटते थे, वहीं सोमवार को ये आंकड़ा 29,000
लेकिन 1 सितंबर से लागू हो चुका है और काफी इसे लेकर फरक तफरी है।
और कांग्रेस ने आर्थिक सुस्ती पर घेरा केंद्र सरकार को, ये खबर कई अखबारों में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कल कहा,
हाँ, जो हमारी पहली खबर थी आज अर्थव्यवस्था की, उसकी चर्चा हर अखबार में है। और
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। 3 तलाक के खिलाफ सबसे मुखर रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा जो है
बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत, इतनी खबरें काफ़ी हैं आज के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जैसा खबर में सुनाया कि पाकिस्तान में जो कुलभूषण जाधव जो भारतीय नागरिक हैं वो 3 साल से भी ज़्यादा वक्त से कैद हैं, उन्हें आज भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिलने दिया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के फैसले को देखते हुए कुलभूषण जाधव को भारतीय उच्चायोग से संपर्क करने दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण जाधव को 40 मिनट के लिए उनकी माँ और पत्नी से मिलने दिया था, मगर वो उन्हें भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करने देने की मांग को ये कहकर ठुकराता रहा था कि कुलभूषण जाधव भारत के जासूस हैं। तो अब क्या कहकर पाकिस्तान उन्हें भारतीय अधिकारियों से मिलने दे रहा है, जानने के लिए भूमिका राय ने इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी से बात की।
पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने एक ट्वीट के जरिए ये अनाउंसमेंट की है कि कुलभूषण जाधव को काउंसिल एक्सेस पाकिस्तान दे रहा है आज यानी मंडे 2nd of September को। बहुत ज्यादा इस हवाले से डिटेल जो है वो शेयर नहीं की गई, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि इट्स इन लाइन विद वियना कन्वेंशन और ICJ की वर्डिक्ट एंड पाकिस्तानी लॉ। ये कब होगी, कहाँ होगी, किस किस्म की एक्सेस है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसमें से कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक वो शेयर नहीं की गई है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ये मुद्दा लेकर गया था क्योंकि अप्रैल 2017 में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के एक मिलिट्री कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उसने उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था, वो इंडिया के सर्विंग नेवल ऑफिसर हैं, वो पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे और बलूचिस्तान में कुछ ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट हैं जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन इंडिया जो है वो ये क्लेम करता है कि वो उसके एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे जो कि ईरान में अपना कारोबार कर रहे थे और उन्हें ईरान से एबडक्ट किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो जजमेंट दी थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा था कि वो उनकी जो मौत की सजा है उसको रिव्यू करें और उन्हें काउंसिल एक्सेस दी जाए। और पाकिस्तान ने ये कहा था इस फैसले के बाद कि वो इंटरनेशनल जो लॉज हैं और ICJ की जो वर्डिक्ट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेगा और जो है वो उसी की कॉन्टिन्यूटी के तौर पे ये अनाउंसमेंट जो है वो सामने आएगी।
आखिर क्या वो वजह रही जिसकी वजह से पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस के लिए लगातार मना करता आ रहा था?
पाकिस्तान ने कुछ ऐसे जो है वो इनिशिएटिव लिया था कि कुलभूषण जाधव की जो फैमिली है उन्हें एक बार एक्सेस दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ये कहता था कि वो एस्पियनेज में इन्वॉल्व थे और उनको पकड़ा है और पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनका ट्रायल हुआ है और उन पे इल्जाम साबित हुआ है, इसलिए पाकिस्तान उनको काउंसिल एक्सेस देने पे जो है वो राजी नहीं हो रहा था। जबकि इंडिया का ये इसरार था, जाहिर है कि वो कुलभूषण जाधव उनके सिटीजन हैं और उनकी यही रहा हमेशा मौकिफ के इंटरनेशनल जो वियना कन्वेंशन जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके तहत पाकिस्तान जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो काउंसिल एक्सेस दे। अब इस काउंसिल एक्सेस से कुछ बेहतरी आएगी नहीं आएगी, ताल्लुकात किस नहज पे जाएंगे, ये तो बिल्कुल भी अभी जो है इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक जेस्चर काउंसिल एक्सेस देना क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट के बाद ही जा रही है, तो इससे कुछ बेहतरी तो आने की कोई बहुत ज्यादा इम्कान या सूरत नजर नहीं आती है, लेकिन जो तनाव है उसके बावजूद इस तरह के राबते होना और इस तरह की चीजों पर प्रोग्रेस होना से आपको थोड़ा इत्मीनान या थोड़ा सा ये रहता है फीलिंग कि शायद दोनों मुल्क जो हैं उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर सेंस प्रिवेल कर रही है।
इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी और अब पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी।
ठीक 47 वर्ष पहले 7 अगस्त 1972 को युगंडा के डिक्टेटर इदी अमीन ने आदेश दिया कि देश में कई पीढ़ियों से आबाद 80,000 के लगभग एशियन 90 दिन में यहां से निकल जाएं, वरना उनकी ज़मीन जायदाद पूंजी जब्त कर ली जाएगी। जो एशियन देश में रहना चाहते हैं उन्हें फिर से नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे हर आवेदन का फैसला छान फटक के बाद मेरिट पे होगा। इनमें से अक्सर की युगंडा में दूसरी या तीसरी पीढ़ी थी और इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि यहाँ से ऐसे निकाले जाएंगे। इदी अमीन ने अंग्रेज़ साम्राज्य शासन के वक्त से आबाद एशियन आबादी के, जिसमें एक बड़ी संख्या गुजराती कारोबारियों की थी, उन्हें देश से अचानक कान पकड़ के निकलने का मुख्य कारण ये बताया कि ये एशियन ना तो युगंडा के वफादार हैं ना ये लोकल अफ्रीकी लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है, कारोबार के बहाने अफ्रीकियों की जेबें खाली करके अपनी तिजोरियां भरना। इन एशियाइयों को निकालने का मकसद देश को युगंडा के असल रहवासियों को लौटाना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने इदी अमीन के इस निर्णय को मानव अधिकारों और नागरिकता के अंतर्राष्ट्रीय उसूलों का खुला उल्लंघन जताते हुए भारतीय राजदूत को राजधानी कंपाला से वापस बुला लिया और युगंडा के राजदूत को दिल्ली से चलता कर दिया। इदी अमीन ने इंडिया और ब्रिटेन समेत पश्चिमी दुनिया के विरोध को बिल्कुल घास नहीं डाली और कहा कि युगंडा के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है ये फैसला सिर्फ युगंडा वाले ही करेंगे, हम किसी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। 80,000 में से 23,000 एशियंस को कागजात की छान फटक के बाद युगंडा में रहने की इजाज़त दे दी गई, मगर 60,000 एशियंस को बोरिया बिस्तर बांधना ही पड़ा। आज से 47 वर्ष पहले का संसार इतना कठोर नहीं था। खुद जो एशियन निकाले गए उनमें से अक्सर पैसे जायदाद वाले थे, इसलिए बहुत सों को ब्रिटेन ने अपने यहाँ बुला लिया, कुछ कीनिया चले गए और वहाँ अपना काम फिर से शुरू कर दिया। 3,000 से 4,000 इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बस गए। इदी अमीन तो कब का चला गया पर उसका भूत रह गया। बर्मा के 1 मिलियन रोहिंग्या और आसाम में रहने वाले 2 मिलियन के लगभग इंसान अवैध अपुरवासी या घुसबैठिए बन चुके हैं, ये सब धरती का बोझ और दीमक बताए जा रहे हैं। इस वक्त ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में कुल मिला के 6 मिलियन के लगभग भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रहते हैं। अगर आज प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो या राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान कर दें कि जो लोग भी 1971 के बाद से अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में आबाद हुए उन्हें दोबारा से नागरिकता के लिए दरख्वास्त देना पड़ेगी वरना उन्हें निकलना होगा, ऐसी पॉलिसी अगर घोषित होती है तो भारतीय गृह मंत्री श्री अमित शाह इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? स्वागत करेंगे, निंदा करेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे?
वसतुल्लाह खान की डायरी और अब खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्ता।
भारत ने सबीना पार्क किंगस्टन जमैका में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 468 रनों का लक्ष्य रखा है, जिसका पीछा करते हुए तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज को अभी भी 423 रनों की जरूरत है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। इससे पहले पहली पारी के आधार पर भारत को 299 रनों की विशाल बढ़त मिली और भारत ने अपनी दूसरी पारी अजिंक्य रहाणे के नाबाद 64 और हनुमा विहारी के नाबाद 53 रनों की मदद से 4 विकेट पर 168 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। भारत के पहली पारी में बनाए गए 416 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी केवल 117 रन पर सिमट गई थी। और अब समीक्षा। भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज क्या वाकई बेहद दमदार है भारतीय गेंदबाजी या फिर बेहद कमजोर है वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी?
Well, it's so good to see that, you know, we have bowlers who will pick us 20 wickets regularly. So it makes the job for the batsmen that much more easier. And we feel a lot of confidence having these guys to bowl for us. And another good day for us and a very, very special day for Jassi and special mention to Hanuma as well.
Yeh hai Bharat ke kaptan Virat Kohli, jinki khushi ka in dino koi thikana nahi hai, kyunki Antigua mein पहला टेस्ट मैच 318 रन से अपने नाम करने के बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी, जब उन्होंने वेस्टइंडीज के 6 विकेट हैट्रिक समेत पहली पारी में उखाड़े और उसके बाद हनुमा विहारी ने भी अंगद की तरह पांव जमाकर बल्लेबाजी करते हुए 111 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत दूसरे टेस्ट मैच पर भी भारत की पकड़ बेहद मजबूत है। अब भला जिस टीम के 5 खिलाड़ी 22 रन तक पहुंचते पहुंचते पैवेलियन पहुंच जाएं और पूरी टीम 117 रन पर लुढ़क जाए तो उसे लेकर क्या कहें? क्या भारत के गेंदबाज इतने घातक हैं या वेस्टइंडीज के बल्लेबाज खुद आत्मघाती साबित हो रहे हैं? क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
शायद मुकाबला बराबर का हो जाता दोनों टीमों में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से टेस्ट सीरीज एक तरफा होने लगी है। बोलर्स की बात जब चलेगी तो हर कप्तान चाहेगा बुमराह, क्योंकि गजब का उनका इंप्रूवमेंट है और उनके पास इतनी वैरायटी है, स्लोअर वन, फास्ट वन, बाउंसर। आप देखें कि यॉर्कर इतना खतरनाक डालते हैं वो। भारत के पास बहुत टाइम बाद एक कम्प्लीट फास्ट बॉलर आया जो अपने दमखम पे सामने वाले टीम को लिटा सकता है।
अब अगर किसी गेंदबाज में इतनी खूबी हो तो कहना ही क्या, और जैसा विजय लोकपल्ली ने कहा, कुछ ऐसा ही बुमराह ने कर दिखाया तेज विकेट का साथ पाकर और उनका लालच बढ़ता गया। लेकिन उन्होंने माना आपा खोए बिना विकेट लेना अब उन्हें आ गया है।
Previous inning as well, there was a lot of bounce and they were getting a lot of bounce. They were getting late movement as well. So sometimes when there's so much of help, you can get greedy. You can go for wickets. You can try to be over aggressive. That time you have to keep things simple. Just try and bowl good balls, create pressure.
बेहद खतरनाक है बुमराह, तो विजय लोकपल्ली के पास और भी बहुत से कारण हैं भारत को मजबूत मानने के।
विहारी का पोटेंशियल तो जब एमएसके प्रसाद ने बहस की सबसे और उनको टीम में डाला, पांचों सेलेक्टर्स की राय विहारी के बारे में एक ही थी, ये बैट्समैन लंबी रेस का घोड़ा है। जैसे पुजारा, ये दो आपके पास टेस्ट बैट्समैन हैं, विराट कोहली हैं, केएल राहुल थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाए, अजिंक्य रहाणे ने जो वापसी की है, ना बैटिंग में कोई कमी है ना आपके पास बॉलिंग में कोई कमी है। अश्विन जैसा बॉलर आप बाहर बिठाएं उसको, 11 में जगह नहीं बन रही है टेस्ट मैचेस में। कितना टैलेंट है इस टीम में। वेस्टइंडीज इस वक्त कमजोर इसलिए लग रही है कि भारत बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है।
अब वेस्टइंडीज कमजोर है तो भारत का क्या कसूर? आखिरकार छोटी छोटी गलतियों से विदेशी जमीन पर हार कर ही तो भारतीय टीम में आया है जीतने का सहूर। उधर रियो डी जेनेरियो में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की यशस्विनी देशवाल ने स्वर्ण पदक के साथ अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों का टिकट हासिल किया। इस विश्व कप में भारत का ये 5वां स्वर्ण पदक है। ये भारत का 9वां ओलंपिक कोटा है। इसके अलावा अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल तीसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव और महिला एकल वर्ग में अमेरिका की सेरेना विलियम्स, चीन की क्वालिफायर वांग कियांग और ब्रिटेन की योहाना कोंटा चौथे दौर की बाधा पार करने में कामयाब रहे। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने के बारे में कहा है कि अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि सरकार से संपर्क में हैं और हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। अर्जेंटीना की सरकार अपनी गिरती मुद्रा को संभालने की कोशिश कर रही है। इसके तहत देश के राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है कि बड़े निर्यातकों को विदेशी मुद्रा खरीदने से पहले और विदेश में ट्रांसफर करने से पहले केंद्रीय बैंक की इजाजत लेनी होगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे दिन भर में। अब अपूर्व कृष्ण को दीजिए अनुमति। नमस्कार।